दूसरा सलातीन बाब 9। एक दिन एलिशा नबी ने नबियों के गिरोह में से एक को बुलाकर कहा, सफर के लिए कमर बस्ता होकर रामात जिलाद के लिए रवाना हो जाएं। जैतून के तेल की ये कुप्पी अपने साथ ले जाएं। वहां पहुंचकर याहू बिन यहोशफत बिन निमसी को तलाश करें। जब उससे मुलाकात हो तो उसके हाथ उसके साथियों से अलग करके किसी अंदरूनी कमरे में ले जाएं। वहां कुप्पी लेकर याहू के सर पर तेल उंडेल दें और कहें, रब फरमाता है कि मैं तुझे तेल से मसह करके इसराइल का बादशाह बना देता हूं। इसके बाद देर न करें, बल्कि फौरन दरवाजे को खोलकर भाग जाएं। चिरांचे जवान नबी रामात जिलाद के लिए रवाना हुआ। जब वहां पहुंचा तो फौजी अफसर मिलकर बैठे हुए थे। वो उनके करीब गया और बोला, मेरे पास कमांडर के लिए पैगाम है। याहू ने सवाल किया, हम में से किसके लिए? नबी ने जवाब दिया, आप ही के लिए। याहू खड़ा हुआ और उसके साथ घर में गया। वहां नबी ने याहू के सर पर तेल उंडेल कर कहा, रब इसराइल का खुदा फरमाता है, मैंने तुझे मसह करके अपनी कौम का बादशाह बना दिया है। तुझे अपने मालिक अखियब के पूरे खानदान को हलाक करना है। यूं मैं उन नबियों का इंतकाम लूंगा जो मेरी खिदमत करते हुए शहीद हो गए हैं। हाँ, मैं रब के उन तमाम खादिमों का बदला लूंगा जिन्हें इजबेल ने कत्ल किया है। अखियब का पूरा घराना तबाह हो जाएगा। मैं उसके खानदान के हर मर्द को हलाक कर दूंगा, खा वो बालिग हो या बच्चा। मेरा अखियब के खानदान के साथ वही सुलूक होगा जो मैंने यरूबाम बिन निबात और बाशा बिन अखियाह के खानदानों के साथ किया। जहां तक यजबेल का ताल्लुक है, उसे दफनाया नहीं जाएगा, बल्कि कुत्ते उसे यज़रेल के जमीन पर खाएंगे। ये कहकर नबी दरवाजा खोलकर भाग गया। जब याहू निकलकर अपने साथी अफसरों के पास वापस आया तो उन्होंने पूछा, क्या सब खैरियत है? ये दीवाना आपसे क्या चाहता था? याहू बोला, खैर, आप तो इस किस्म के लोगों को जानते हैं कि किस तरह की गप्पे हाँकते हैं। लेकिन उसके साथी इस जवाब से मुतमईन न हुए, झूठ सही बात बताएं। फिर याहू ने उन्हें खुलकर बात बताई। आदमी ने कहा, रब फरमाता है कि मैंने तुझे मसह करके इसराइल का बादशाह बना दिया है। ये सुनकर अफसरों ने जल्दी जल्दी अपनी चादरों को उतारकर उसके सामने सीढ़ियों पर बिछा दिया। फिर वो नरसिंगा बजा बजा कर नारे लगाने लगे, याहू बादशाह जिंदाबाद। याहू बिन यहोशफत बिन निमसी फौरन योराम बादशाह को तख्त से उतारने के मंसूबे बांधने लगा। योराम उस वक्त पूरी इसराइली फौज समेत रामात जिलाद के करीब दमिश्क के बादशाह हजाइल से लड़ रहा था, लेकिन शहर का दफा करते करते बादशाह शाम के फौजियों के हाथों जख्मी हो गया और मैदान जंग को छोड़कर यज़रेल वापस आया ताकि जख्म भर जाएं। अब याहू ने अपने साथी अफसरों से कहा, अगर आप वाकई मेरे साथ हैं तो किसी को भी शहर से निकलने न दें, वरना खतरा है कि कोई यज़रेल जाकर बादशाह को इत्तला दे दे। फिर वो रथ पर सवार होकर यज़रेल चला गया, जहां योराम आराम कर रहा था। उस वक्त यहूदा का बादशाह अखज़िया भी योराम से मिलने के लिए यज़रेल आया हुआ था। जब यज़रेल के बुर्ज पर खड़े पहरेदार ने याहू के गोल को शहर की तरफ आते हुए देखा तो उसने बादशाह को इत्तला दी। योराम ने हुक्म दिया, एक घुड़सवार को उनकी तरफ भेजकर उनसे मालूम करें कि सब खैरियत है या नहीं। घुड़सवार शहर से निकला और याहू के पास आकर कहा, बादशाह पूछते हैं कि क्या सब खैरियत है? याहू ने जवाब दिया, इससे आपका क्या वास्ता, आए मेरे पीछे हो लें। बुर्ज पर के पहरेदार ने बादशाह को इत्तला दी, कासिद उन तक पहुंच गया है लेकिन वो वापस नहीं आ रहा। तब बादशाह ने एक और घुड़सवार को भेज दिया। याहू के पास पहुंचकर उसने भी कहा, बादशाह पूछते हैं कि क्या सब खैरियत है। याहू ने जवाब दिया, इससे आपका क्या वास्ता, मेरे पीछे हो लें। बुर्ज पर के पहरेदार ने ये देखकर बादशाह को इत्तला दी, हमारा कासिद उन तक पहुंच गया है लेकिन ये भी वापस नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि उनका रहनुमा याहू बिन निमसी है, क्योंकि वो अपने रथ को दीवाने की तरह चला रहा है। यूराम ने हुक्म दिया, मेरे रथ को तैयार करो। फिर वो और यहूदा का बादशाह अपने अपने रथ में सवार होकर याहू से मिलने के लिए शहर से निकले। उनकी मुलाकात उस बाग के पास हुई जो नबूत यज़रेल से छीन लिया गया था। याहू को पहचान कर यूराम ने पूछा, याहू क्या सब खैरियत है। याहू बोला, खैरियत कैसे हो सकती है जब तेरी माँ एजबेल की बुतपरस्ती और जादूगरी हर तरफ फैली हुई है। यूराम बादशाह चिल्ला उठा, ए अख़ज़िया गद्दारी, और मुड़कर भागने लगा। याहू ने फौरन अपनी कमान खींचकर तीर चलाया जो सीधा यूराम के कंधों के दरमियान यूं लगा कि दिल में से गुजर गया। बादशाह एकदम अपने रथ में पड़ गया। याहू ने अपने साथ वाले अफसर बिदकर से कहा, इसकी लाश उठाकर उस बाग में फेंक दें जो नबूत यज़रेली से छीन लिया गया था, क्योंकि वो दिन याद कर जब हम दोनों अपने रथों को इसके बाप अखियब के पीछे चला रहे थे और रब ने अखियब के बारे में ऐलान किया, यकीन जान कि कल नबूत और उसके बेटों का कत्ल मुझसे छुपा न रहा। इसका मुआवजा मैं तुझे नबूत की इसी जमीन पर दूंगा। चुनांचे अब योराम को उठाकर उस जमीन पर फेंक दे ताकि रब की बात पूरी हो जाए। जब यहूदा के बादशाह अख़ज़िया ने ये देखा तो वो बैतगान का रास्ता लेकर फरार हो गया। याहू उसका ताकुब करते हुए चिल्लाया, उसे भी मार दो। इबलियाम के करीब जहां रास्ता जोर की तरफ चढ़ता है, अख़ज़िया अपने रथ में चलते चलते जख्मी हुआ। वो बच तो निकला लेकिन मजिद्दू पहुंचकर मर गया। उसके मुलाजिम लाश को रथ पर रखकर यरूशलम लाए। वहां उसे यरूशलम के उस हिस्से में जो दाऊद का शहर कहलाता है, खानदानी कब्र में दफनाया गया। अख़ज़िया योराम बिन अखियब की हुकूमत के 11वें साल में यहूदा का बादशाह बन गया था। इसके बाद याहू यज़रेल चला गया। जब एजबेल को इत्तला मिली तो उसने अपनी आंखों में सुरमा लगाकर अपने बालों को खूबसूरती से संवारा और फिर खिड़की से बाहर झांकने लगी। जब याहू महल के गेट में दाखिल हुआ तो एजबेल चिल्लाई, ऐ ज़िम्री, जिसने अपने मालिक को कत्ल कर दिया है, क्या सब खैरियत है। याहू ने ऊपर देखकर आवाज दी, कौन मेरे साथ है, कौन। दो या तीन ख्वाजा सराओं ने खिड़की से बाहर देखकर उस पर नजर डाली तो याहू ने उन्हें हुक्म दिया, उसे नीचे फेंक दो। तब उन्होंने मलका को नीचे फेंक दिया। वो इतने जोर से जमीन पर गिरी कि खून के छींटे दीवार और घोड़ों पर पड़ गए। याहू और उसके लोगों ने अपने रथों को उसके ऊपर से गुजरने दिया। फिर याहू महल में दाखिल हुआ और खाया और पिया। इसके बाद उसने हुक्म दिया, कोई जाए और उस लानती औरत को दफन करे, क्योंकि वो बादशाह की बेटी थी। लेकिन जब मुलाजिम उसे दफन करने के लिए बाहर निकले तो देखा कि सिर्फ उसकी खोपड़ी, हाथ और पांव बाकी रह गए हैं। याहू के पास वापस जाकर उन्होंने उसे आगाह किया। तब उसने कहा, अब सब कुछ पूरा हुआ है जो रब ने अपने खादिम इलियास तिशवी की मार्फत फरमाया था। यज़रेल की जमीन पर कुत्ते एजबेल की लाश खा जाएंगे। उसकी लाश یزرائیل کی زمین پر گوبر کی طرح پڑی رہے گی، تاکہ کوئی یقین سے نہ کہہ سکے کہ وہ کہاں ہے۔